গোপী জনবল্লভা গিরিবর ধারিয়ায়, জয় গোপী জনবল্লভা গিরিবর ধারিয়ায়, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যমুনা তীরাবনচারী যমুনা তীরাবনচারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ, বল নিতাই 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 গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ বল গৌর হরি, নিতাই গৌরাঙ্গ বল গৌর হরি, গৌরা 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 হরি, বলো Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Bola Gaura 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 Hari Bola Gaura 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 Hari Bola Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe, Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe, Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe, Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe, Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radhe, Jaya Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radhe, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Shobhadra, Anita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Anita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Prabhupada Guru Premanandi Jayam Vishwabhat Paramahansa Paribrajaka Acharya Ashtattara Shatara Sishima Silo Abhay Chodhar Binda Bhakti Vedanta Swami Silo Bhopadi Ki Jai Dantharat Srimad Bhagavatam Ki Jai Chandan Jatta Mahamahotsav Ki Jai Silo Madhanda Puripa Chandan Jatta Mahamahotsav Ki Jai Guru Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirahe Nashta Prayeshu Avadreshu Nittam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhakti Bhavati Noistiki Anirpita Charing Chirat Kurunayavatin Nokalon Natujalarasam Shabhakti Shyam Hari Purata Sundara Duti Kadamba Shandi Pitaha Shadari Dayakandare Spuratu Vashachinandana Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivashadi Sigur Bhakta Vinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Mukham Karati Vachalam Pangum Langayate Girim Jatkipata Maham Bande Paramananda Madhavam Hare Krishna So today is Ravivar ka Saptahik Karikram mein Charcha karenge Srila Madhavendra Puripad ka Chandan Jatta Mahamahotsav Yadyapi pichle Sunday ko परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चंदन यात्रा के ऊपर वर्णन की थी फिर भी उनका समय का अनुसार थोड़ा संक्षिप्त रूप में वर्णन करने पड़े जिसके लिए हमारा मंदिर का अध्यक्ष कमलोचन पो का विशेष निर्देश जी आज चंदन यात्रा के ऊपर विस्तृत रूप से वर्णन करने का क्योंकि इस चंदन यात्रा उत्सव 21 दिन तक होती है इस अक्षय तृतीया से चालू हुआ और 15 दिन और बाकी है ये चंदन यात्रा उत्सव किसी का मन में भावना रहते है कि चंदन यात्रा उत्सव से मंदिर में ही होना चाहिए लेकिन श्रील प्रभुपाद ये चंदन यात्रा उत्सव को ऊपर वर्णन की कि किसी का घर में कोई भी अगर विग्रह है अगर विग्रह का बात छोड़ दीजिए किसी का घर में अगर भगवान का आलेख की फोटो भी है उसमें भी आप ये चंदन लेपन कर सकते हैं जिसके लिए इस चंदन यात्रा का और एक नाम है गौड़ीय वैष्णव समाज जिसको शिकार किए जिसका नाम है गंधो लेपन उत्सव इस गंधो लेपन उत्सव में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस गंधो लेपन उत्सव मतलब चंदन के द्वारा भगवान को लेपन करने का जिसके लिए इसका नाम है गंध क्योंकि चंदन इसी भावना से सुगंधी होते हैं और इसको लेपन करने का जिसके लिए इसका नाम है गंधो लेपन उत्सव श्री भोपाल जी कहते हैं कि जिसका अगर मंदिर में आने के लिए समय नहीं है लेकिन चंदन यात्रा उत्सव को घर में अगर चाहे तो अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो किसी का मन में भावना हो सकता है मेरा घर में तो कोई विग्रह नहीं है मेरा घर में तो मैं फोटो के द्वारा मैंने पूजा कर रहा हूं आलेख है सिर्फ घर में
कुछ भी विग्रह में रखा नहीं, तो कैसे मैं चंदन जत्ता उस सबको मना सकता हूं। श्री प्रभुपाद जी कहते कि जिसका हृदय मलिन है, चाहे तो घर में बैठकर उसी आलोक में चंदन डाल के चंदन को लेपन करके आप चंदन जाता उत्सव को घर में बना सकते हैं। और इसी चंदन जाता उत्सव जिन्होंने 21 दिन तक हरि बोल थोड़ा शांति बजाय रखे कि माधवेंद्र पुरीपाद का सबसे प्रिय कलियुग के पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ये चंदन जाता उत्सव किस तरीका से माधवेंद्र पुरीपाद बनाए विस्तृत रूप से उन्होंने वर्णन की। शास्त्र में वर्णन है कि जब माधवेंद्र पुरीपाद वार्धक अवस्था प्राप्त हो चुके थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्य अवस्था प्रकट की। तो सोच लीजिए कि वयस का डिफरेंस कितना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब बाल्य अवस्था तब माधवेंद्र पुरीपाद का वार्धक अवस्था प्राप्त हो गए। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पार्षद बिंदु को बैठकर रेवुना का प्रांगण में बैठकर इसी चंदन जाता को वर्णन की। तो किसी का मन में प्रश्न आ सकता है तो महाप्रभु तो माधवेंद्र पुरीपाद का कभी दर्शन भी नहीं किए हैं, कोई भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है कि माधवेंद्र पुरीपाद श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलन हुए थे, कोई भी जगह भी नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन हुए थे। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरीपाद की दीक्षा भी ग्रहण की थी, एक साथ घूमे भी दक्षिण भारत में। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्र पुरीपाद के कोई भी जगह में कोई डायरेक्ट साक्षात नहीं हुए। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरीपाद का गुण कीर्तन किए। सुनो सुनो नित्यानंद करो विचार, पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं आज। जिन्होंने कभी दर्शन भी नहीं किए थे, कभी साक्षात्कार भी नहीं हुए दोनों में, क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद का जब वार्धक अवस्था प्राप्त हो गए थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु का बाल्य अवस्था प्रकट हो रहा है। तो वयस का फर्क कितना होता है। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरीपाद का गुणों कीर्तन कर रहे हैं। सुनो सुनो नित्यानंद करो विचार, पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं आए। स्वयं महाप्रभु जो कि भगवान कलियुग का पावन अवतार, जिन्होंने स्वयं माधवेंद्र पुरीपाद का गुणों कीर्तन करा कि पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं आए। ऐसे लोगों पर वर्णन कि जितना भी पाखंडी व्यक्ति हो अगर इसी चंदन जाता उत्सव ऐसी चंदन जाता लीला को अगर ध्यान से अगर श्रवण करे तो कृष्ण चरण में प्रेमो धन प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा युक्त होया या सुने जे जान श्री कृष्ण चरण से ही पाए प्रेमो धन। जिन्होंने श्रद्धा के द्वारा यही चंदन जाता लीला भगवान अपने के लिए नहीं बोला था माधवेंद्र पुरीपाद को जी आप मेरा शरीर में पूरा गर्म हो गया मेरा शरीर आप मेरे का चंदन लगा दो, आपने के लिए नहीं बोले थे। भक्तवत्सल भगवान भक्त का सेवा का भाव को जागृत करने के लिए स्वयं भगवान माधवेंद्र पुरीपाद के कहा कि इसी चंदन का लीला का माध्यम से चंदन जाता लीला को प्रकट की थी। इसलिए बहुपात वर्णन किए कि चंदन यात्रा का ऊपर अगर जिनका समय नहीं होता है इस मंदिर में आकर चंदन यात्रा उत्सव में 21 दिन का कार्यक्रम में भगवान का दर्शन करने का, क्योंकि इस 21 दिन में भगवान एक एक दिन अलग अलग तरीका से अंगो राग होते हैं। भगवान कभी भगवान राजवेश धारण कर लेती है, कभी भगवान नटवर वेश लेते हैं, कभी भगवान का जन्म वेश होता है, कभी भगवान का बिहारी लाल वेश हो जाता है। 21 दिन का अलग अलग वेश होते हैं और लास्ट दिन चंदन जाता का 21वां दिन में भगवान को कहते कि घेरुआ वेश मतलब घोड़े का माफिक भगवान आपने को प्रकटित कर देते हैं। रूपा जी कहे कि किसी का अगर समय नहीं है मंदिर आने का, कभी कभी होता है सांसारिक चाप के कारण कभी कभी मंदिर में आने में तकलीफ होता है किसी को, तो उसी प्रकार व्यक्ति को प्रभुपाद जी निर्देश दिए कि घर में बैठकर भी आप इसी चंदन जाता उत्सव का मना सकते हैं। ये दीक्षित भक्त है स्वाभाविक रूप से उनका घर में कभी राधा कृष्ण का विग्रह रहता है, नहीं तो गौनीता है, नहीं तो जगन्नाथ और नहीं तो गोपाल जी, तो एटलीस्ट रहते हैं गोपाल जी का विग्रह घर पे। कोई भी विग्रह रहे, जय गौर, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ, ये तीनों में कुछ अंतर नहीं होता है। कोई भी विग्रह अगर आपके घर में रहे, स्वाभाविक रूप से घर में जनरली देखते हैं कि गोपाल जी का विग्रह रहते हैं घर पे। इस गोपाल जी का विग्रह को चंदन लगाकर चंदन उत्सव मना सकते हैं घर पे। ये चंदन के द्वारा, जैसे चंदन के द्वारा भगवान का हृदय मलिन नहीं, भगवान का तो हृदय मलिन है, अपना हृदय का मैं मलिन कर सकते हैं। भगवान ने माधवेंद्र पुरीपाद को निर्देश दिया कि मेरे लिए अब चंदन लेकर आओ, उनके लिए नहीं मांगा था भगवान ने, भक्त का माध्यम से उन्होंने ये लीला को प्रकटित किए थे कि भक्त का हृदय सदा सर्वदा निर्मल होना चाहिए। निर्मल सदा चित्त यो कर हे वचन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में इस वर्णन की है। तो देखिए चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे कि माधवेंद्र पुरीपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों में कभी भी साक्षात्कार नहीं हुए। स्वाभाविक रूप से हम लोग जानते हैं कि चैतन्य चैतन्य मतलब सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु का अलौकिक लीला कहानी, लेकिन फिर भी मध्य लीला में एक अध्याय सिर्फ माधवेंद्र पुरीपाद का गुणों कीर्तन किए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। लगभग 230 श्लोक, मोर देन 230 श्लोक सर दिए इन चैतन्य चैतन्य मध्य लीला। 230 श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी माधवेंद्र पुरीपाद का गुणों कीर्तन किए थे। और कहते हैं कि जिन्होंने इस चैतन्य चैतन्य माध्यम से ये चंदन यात्रा उत्सव लीला को ज्यादा ध्यान से अगर श्रवण करे तो कृष्ण का चरण में प्रेमो धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निवेदन है कि बड़ा ध्यान से सुनिए। पिछले संडे को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने बताया चंदन यात्रा उत्सव, उनके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ये माधवेंद्र पुरीपाद का चंदन यात्रा उत्सव। तो माधवेंद्र पुरीपाद जो कि जिंदगी में कभी किसी को भीख मांग के खाते नहीं थे, उनका स्वभाव नहीं था कभी किसी के पास कुछ मांगने का, लेकिन भक्त वत्सल भगवान अपना भक्त को कभी भूखा नहीं रखते। गोवर्धन परिक्रमा किए माधवेंद्र पुरीपाद ने, माधवेंद्र पुरीपाद गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद गोविंद, जिन्होंने गोवर्धन परिक्रमा की उनको जरूर पता होगा कि 84 क्रोश परिक्रमा में एक जगह है जिसका नाम है गोविंद कुंड। इस गोविंद कुंड का तट में बैठकर माधवेंद्र पुरीपाद भगवान का बारे सोच रहे थे और गोवर्धन पर्वत का बारे उन्होंने सोचना चालू किया। अचानक भले भी उनका भूखा पेट है, फिर भी किसी के पास कुछ मांगे नहीं, लेकिन भगवान भक्त वत्सल भगवान को पता हो गया कि मेरा परम प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी जो कि भूखा है, भगवान रूप लेकर नहीं आए थे माधवेंद्र पुरी पास के सामने, एक गोपो बालक रूप लेकर एक पात्र में थोड़ा दूध लेकर आ गए सामने, आके कहने लगे कि आपने भीख क्यों नहीं मांगते हो, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो, किसका बारे आप चिंतन कर रहे हो। माधवेंद्र पुरी पास कहने लगे, आपको कैसे पता है कि मैंने भूखा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं तीन दिन तक, बताया मेरे को पता होगी कि किस गोविंद कुंड में को पानी लेने के लिए कोई आए वो जाके मेरे को बताए कि आप भूखे हो, आप खुदार्थ हो, इसके लिए मैंने आपके लिए एक पात्र में मैंने दूध लेकर आया हूं आपके लिए, आप दूध पीकर ये पात्र को रख देना, मेरे को अभी जाना पड़ेगा, मेरा बहुत सारे काम है, आप ये पात्र को रख देना अच्छे तरीके से, मैं रात को आकर जरूर ये पात्र को लेकर जाऊंगा। माधवेंद्र पुरी बड़ा श्रद्धा के साथ उसी गोपो बालक से हाथ से ये दुग्ध पात्र को उन्होंने ग्रहण की और दुग्ध को उनके पी भी लिए। पीने के बाद पूरा दिन भर उन्होंने इंतजार किए कि गोपो बालक को मेरे को कुछ धन्यवाद देना है, कुछ थैंक्स बोलना है, लेकिन पूरा दिन चला गए, रात हो गए, गोपो बालक आए नहीं उनका सामने। इस प्रसंग में श्री गोपाल जी वर्णन कर रहे हैं यही चंदन जत्ता उत्सव का शुरू बात यहां से चालू हुई। जो मैंने पहले बताया कि चंदन जाता उत्सव अगर किसी के घर में भी बनाना है, घर में भले भी अगर कोई बिगड़ो वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा फोटो रखकर अपने भगवान को भोग अर्पित करकर आपने प्रसाद ग्रहण कर रहे हो हर दिन, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपका मन में इच्छा है कि मैं जिस तरीका से मंदिर में भगवान को चंदन के द्वारा श्रृंगार होते हैं उसी तरीका से मैं भगवान को श्रृंगार करूं। भोपाल जी कहते वेल डन, आप कर सकते हो आराम से। किस तरीका से कर सकते हो? इस चंदन को आप लेपन का माध्यम से, मतलब चंदन को जिस तरीका से मंदिर में लगाते हैं उसी तरीका से घर में आप फोटो के ऊपर लगा सकते हो। किसी का मन में भावना है कि चंदन जाता उत्सव मतलब सिर्फ गिरिधारी को ही चंदन लगाने का, तो कोई सोच सकता है कि अरे मेरा घर में तो मैंने राधा कृष्ण विग्रह रखा नहीं हूं, राधा कृष्ण विग्रह तो है नहीं मेरा घर में, मैंने सिर्फ जगन्नाथ जी को रख दिया हूं। किसी के घर में जगन्नाथ भी नहीं है, सिर्फ गौर नीत क्या पूजा होते हैं, तो मैं कैसे चंदन जत्ता उत्सव को निभा सकता हूं अपने घर में बैठकर। श्रील प्रभुपाद जी स्पेशल रूप से निर्देश दिए, कीर्तनानंद स्वामी को एक लेटर लिखे, इफ यू वांट टू डू चंदन जाता, इफ यू वांट टू परफॉर्म चंदन जाता उत्सव इन योर हाउस, यू कैन पुट चंदन इन योर गौर नीताई ड्यूटी और एटलीस्ट गोपाल ड्यूटी। 1972 में 13 सितंबर स्ट्रिक्टली उन्होंने निर्देश दे दिए थे कीर्तनानंद स्वामी। कीर्तनानंद स्वामी जो कि प्रभुपाद जी का अंतरंग प्रिय शिष्य थे, जो कि थोड़ा दिन पहले देह छोड़कर गोलोक वृंदावन में पहुंच गए, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था प्रभुपाद जी को, जो प्रभुपाद जी बहुत सारे भक्त आकर पूछ रहे हैं मैं मंदिर तक आ नहीं पाता हूं, क्योंकि सही उसी समय वेस्ट वर्जीनिया मंदिर में कीर्तनानंद स्वामी महाराज रहते थे और उधर से बहुत सारे भक्त बहुत बहुत दूर दूर से आते थे, इतना कम्युनिटी वगैरह नहीं था 1973 में। लेकिन उनको चंदन जत्ता उत्सव को मनाना है घर में, तब श्रील प्रभुपाद जी एक लेटर लिख दिए थे। आज का जमाना में एक नहीं है कि फैक्स कर देने का, ईमेल कर देने का, फोन में बताने का, नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने लेटर भेजे थे, उसमें लिखा है 13 मई में उन्होंने लिखा है कि दिस इज माई इंस्ट्रक्शन, इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म चंदन जत्ता इन योर हाउस यू कैन पुट चंदन इन योर ड्यूटीज इन योर हाउस, मतलब आप घर में बैठकर भी ये चंदन जत्ता उत्सव बना सकते हो। आपका घर में जो भी विग्रह होगा, अगर विग्रह नहीं भी है, आलेख का मतलब फोटो है जिसकी आप हर दिन पूजा आराधना करते रहते हो, उसमें आप चंदन लगाकर चंदन जत्ता उत्सव को मना सकते हो, क्योंकि इस चंदन जत्ता चंदन लेपन गंध लेपन का माध्यम से अपना हृदय को निर्मल होता है, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि अगर समय आपको नहीं हो रहा है मंदिर तो बुरी बात, गोवर्धन परिक्रमा करके आए, आड़े सोचने लगे पूरा दिन भर गोवर्धन का बारे उन्होंने स्मरण कर रहे थे, अचानक गोपो बालक आकर उनको पात्र में दुग्ध डालकर ढके गए, पूरा दिन रात भर उन्होंने इंतजार की लेकिन वो गोपो बालक आए नहीं। माधविंद्र पूरी बात सोचने लगे ये छोटा बालक मेरे को दुग्ध देकर गए, लेकिन मैं पूरा दिन रात भर उनके लिए इंतजार की लेकिन अभी तक आए ही नहीं पात्र लेने के लिए, तो इस पात्र को मैंने क्या करूं रात में। ऐसा सोचते सोचते माधवेंद्र पुरीपाद का गंभीर नींद आ गई। जब गंभीर नींद आ गए तब माधवेंद्र पुरीपाद देख रहे जिस गोपो बालक, ऐसे कोई मामूली गोपो बालक नहीं है, परम पुरुषोत्तम भगवान गोपो बालक का रूप लेकर मेरा सामने आकर मेरे को दुख दुख पिला के गए और कहने लगे कि मैं इतना दिन तक माधवेंद्र माधव तुम होते आमी करी अवसर पार, मैं आपके लिए इतना समय तक, इतना दिन तक मैंने आपके लिए इंतजार किया हूं, माधव तुम होते आज ही उद्धार हो गया। हमारे चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि माधव एत दिन चिंतनु तुम्हारे जे आमी तुम्हारे होते आमी उद्धार पाईबू आने मतलब इतना दिन तक मैं सोच रहे थे मेरे को कौन उद्धार कर सकते हैं तो मेरा परम प्रिय भक्त माधव माधवेंद्रपुरी पाद नहीं कहे उन्होंने इस माधवेंद्रपुरी पाद का नाम का महात्य का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर वर्णन के चेतना भागवत ग्रंथ में पहले माधवेंद्रपुरी पाद का कोई भी वंश परिचय का वगैरह कुछ फैमिली हिस्ट्री वगैरह कुछ भी वर्णन नहीं है कोई भी शास्त्र में वर्णन नहीं है उसका माधव कैसे माधवेंद्रपुरी पाद हो गए जैसा माता पिता का कोई बच्चा प्यारे बच्चा होता है तो कोई बड़ा नाम रख देते हैं तो बड़ा नाम को सिर्फ सर्टिफिकेट में लिखना पड़ता है अगर कोई कोई बच्चा का नाम है प्रेमानंद लेकिन छोटे बच्चे का नाम रूप से कोई छोटा एक नाम रख दिए तो इस छोटा नाम से प्यारे नाम होता है वो प्यारे नाम से बुलाते रहते हैं घर पे तो माधवेंद्रपुरी पाद कितना बड़ा नाम लेकिन भगवान उनको तीन तीन बार दर्शन दिए कहते हैं कि स्वयं महाप्रभु कहने लगे सुनो सुनो नित्यानंद करो विचार पूरी सम भगवान जगत नाइया तीन बारो दर्शन दिला तारे तीन तीन बार भगवान स्वयं माधवेंद्रपुरी पाद का दर्शन किए थे और प्यार से माधवेंद्रपुरी पाद को स्वयं भगवान कहने लगे माधव तुम्हारो हृदय आसी मोर कथा कहने लगे माधव मेरा परम प्रिय हो मैं इतना दिन तक आपको इंतजार किए से आपके द्वारा मेरे को उद्धार हो सकता है जीवेर उद्धार लागी नंद सुत होरी जैसा कि जीव को उद्धार करने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसी धराधाम में आपने प्रकटित किए थे और इसी तरीका से गोपाल जी को उद्धार करने के लिए गोपाल जी को स्वयं माधवेंद्र पुरीपाद के द्वारा गोपाल जी ने उद्धार तो गभी रात हो गए तब माधवेंद्र पुरी पाद देख रहे स्वप्न में जो जिस गोप बालक मेरे को इस पात्र में दुग्ध लेकर आए थे वो गोप बालक ऐसे कोई मामूली गोप बालक नहीं है स्वयं भगवान मेरा सामने उपस्थित हो गए थे लेकिन मैंने इतना मूर्ख हूं कि मैं उसको दर्शन नहीं कर पाया अच्छे तरीका से तो कहने लगे माधव मैं इतना समय तक मैंने आपके लिए अपेक्षा की जिस जगह में आप बैठे उसके पीछे देखो एक बहुत बड़ा जंगल है इस जंगल के नीचे एक मिट्टी का नीचे मैं बहुत साल तक आपके लिए इंतजार कर रहा हूं क्योंकि वज्र मेरे को लेकर आए थे इधर मतलब भगवान का भातृष्पुत्र वज्र वो मेरे को इधर लेकर आए लेकिन उसी समय जब सेवा पूजा चल रहे थे मुसलमान समाज आ गए सामने मुसलमान लोग आके अटैक किए तब मेरे को छोड़कर चला गया मेरा सेवक तब से मैंने मिट्टी का नीचे हूं कितना मेरे को कष्ट मिल रहा है मैं इतना दिन तक मैंने इंतजार किए कि मेरा परम प्रिय माधव आ जाए तो माधव आए तो आज आपका हाथ से मेरे को उद्धार होना है तो माधवेंद्रपुरी पाद पूरा रात भर सोचने लगे कि मैंने कितना मूर्ख हूं मेरा सामने स्वयं भगवान उपस्थित हो गए थे फिर भी मैंने कुछ कर नहीं पाया दूसरा दिन सवेरे माधवेंद्रपुरी पाद गांव वाले सबको बुलाए कि सुनो इसी जो जंगल आप देख रहे हो ना इसी जंगल में सबके परम देवता गोपाल जी इसमें जंगल का नीचे है मैं कल सपने में देखा तो कोई गांव वाले कहने लगे ये लगता है माधवेंद्रपुरी पाद ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है ठीक है घर से सब कुछ लेकर आओ हम लोग मिट्टी खोद कर देखते हैं कि अंदर में क्या है पूरा गांव वाले आ गए एक साथ आने के बाद मिट्टी से देखा कि बहुत ही सुंदर एक गोपाल जी का मूर्ति आए गोपाल जी का बहुत ही सुंदर विग्रह आ गए तो माधवेंद्रपुरी पाद आश्चर्यचकित हो गए जैसे मैंने सपने में देखा था ठीक ऐसे ही एज इट इज एक गोपाल मूर्ति आ गए सामने बड़ा धूमधाम से मेरे को इसका अभिषेक वगैरह करना है जैसे भगवान का जन्म होने के बाद भगवान के लिए जो अन्नकूट उत्सव बनाए इसी तरीके से माधवेंद्रपुरी पाद अन्नकूट उत्सव बनाए थे आजू बाजू गांव से जितने गांव वाले हैं सब लोग पहुंच गए सामने पंच गोव्य और पंचामृत के द्वारा अभिषेक किया शास्त्र में वर्णन किए कि पंच गोबर पंचामृत के द्वारा अभिषेक होने के बाद चार मौन, मतलब एक मौन का अर्थ होता है 40 kg, मतलब 160 किलो तेल के द्वारा उसी गोपाल जी को अभिषेक किए थे। चार मौन अंगे लेपन करिलो तोमा, चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, चार मौन अंग लेपन करिलो तोमा, मतलब चार मौन तेल डालकर गोपाल जी का अभिषेक वगैरह किए। और शास्त्र में वर्णन किए, चैतन्य मंगल ग्रंथ में भी इसका वर्णन है, लोचन दास ठाकुर वर्णन कर रहे, 100 जन लइया करे अंगन मार्जन, 10 को 100 को आज करिल भाजन। मतलब 100 आदमी लेकर से गोपाल जी का मार्जन किया, मतलब गोपाल जी का मालिश वगैरह की, और 10 आदमी ने सिर्फ इसी उत्सव को मना लेके 10 आदमी बैठकर सब्जी वगैरह काटना चालू किए। तब कितना बड़ा अन्नकूट उत्सव बनाए, इस राधा गिरिधारी मंदिर बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है सबको, सुबह से रात तक हम लोग भक्ति रहते हैं, क्योंकि भगवान का मंदिर तो सुंदर से बनाना है। देखिए माधवेंद्र पुरीपत एक दिन के अंदर इतना बड़ा अन्नकूट उत्सव बना दिए, गांव गांव से सब लोग आ गए इसी अन्नकूट उत्सव में भाग लेने के लिए, खाली हाथ में कोई भी नहीं आए, क्योंकि भगवान का मंदिर में कोई आते हैं तो खाली हाथ में नहीं आते। तो प्रश्न आ सकता है, अरे भगवान के पास सब कुछ है फिर भी हम लोग को क्यों देना पड़ता है? यह एक विधि होता है कि भगवान का मंदिर में आपने आए, खाली हाथ में नहीं आने का, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिए, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे वो भी आपने प्राप्त कर चुके हो, लेकिन फिर भी भगवान का मंदिर में खाली हाथ में नहीं आने का। कुछ ना, अगर भले भी आपका क्षमता नहीं है कुछ भी, भले भी आपने झोपड़ी में रहते हो, फिर भी आने का समय भगवान के लिए थोड़ा कुछ लेकर आने का। अगर कुछ भी नहीं है साथ में, एक फूल आप लेकर आ सकते हो, एक चंदन का पुष्प आप लेकर आ सकते हो। तो गांव वाले सब लोग आ गए इस अन्नकूट उत्सव में भाग लेने के लिए। बड़ा धूमधाम से 3 दिन तक माधवेंद्र पुरीपाद आपने हाथ में कुछ सेवित विग्रह को अभिषेक वगैरह किए। चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर इसका वर्णन कर रहे कि पहले पंच गोबर के द्वारा गोपाल जी का अभिषेक किए माधवेंद्र पुरीपाद, पंच गोबर के द्वारा अभिषेक किए। पंच गोबर का डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, सबको पता होगा। बाद में पंचामृत के द्वारा, पंचामृत के द्वारा अभिषेक किए, पहले पंच गोबर के द्वारा किए। ये पंचामृत और पंच गोबर इसके ऊपर गोपाल जी वर्णन कर रहे कि उसी समय गौ माता का कितना इज्जत थी, जिसके लिए पहले क्योंकि गोमय गोमूत्र ये गावी के द्वारा ही होता है, गौ माता के द्वारा ही मिलते हैं, इसके लिए गौ माता का कितना इज्जत थी, जिसके लिए पहले माधवेंद्र पुरीपाद ये पंच गोबा पंचामृत के द्वारा गोपाल जी को अभिषेक बगैर किए। बाद में अन्नकूट उत्सव बनाए, हजारों हजारों व्यक्ति आकर इसका प्रसाद को प्राप्त किए। आर माधवेंद्र पुरीपद अपना 2 सेवक को नियुक्त किए थे इस गोपाल को अच्छे तरीके से सेवा करने के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा वगैरह हो रहा है, 7-8 दिन 10 दिन हो गए। माधवेंद्र पुरीपद एक दिन रात को भगवान को शरण देने के बाद अपना कुटिया में आके सो गए। उन्होंने गोभी रात हो गए, गोपाल जी कहने लगे, माधव मेरा फिर कष्ट चालू हो गए। तो माधवेंद्रपुरी कहने लगे, क्या हो गया आपका? आप इतना दिन के मिट्टी का नीचे थे, मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से मंदिर बनाकर उसमें स्थापना किया हूं, कितने अच्छे तरीके से आपका सेवा पूजा वगैरह चल रहा है, आपका तो कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। बोलते, नहीं मेरे को खाने पीने में कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा पूरा शरीर एकदम जल रहा है। बोलते, आपका शरीर जल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? बोलते, आप एक काम करो, आप मलयज पर्वत, आज वो मलयज पर्वत जो है मलेशिया में है, जिसके लिए कहते कि मलेशिया का चंदन सबसे विख्यात है, लेकिन आजकल तो असली चंदन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो गोपाल जी कहने लगे कि माधव आप एक काम करो, मेरा शरीर पूरा जल रहा है इसी गर्मी के कारण, मैंने इतना दिन तक मिट्टी का अंदर था ना, इसके लिए मेरा पूरा शरीर जल रहा है, इस शरीर को अगर आपको ठंडा करना है तो तो मलय जो पर्वत से आप मेरे लिए थोड़ा चंदन और कपूर लेकर आओ। तो माधविंद्रपुरी पर सोचने लगे, मेरा इतना उम्र हो गए, मैं कैसे जा सकता हूं मलय जो पर्वत, और कहा है ये गोवर्धन और कहा है मलय जो पर्वत। उसी जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था कि फटक से 7 बजे आपने सोच लिया कि 7:30 बजे का फ्लाइट पकड़ लिए, ऐसा तो हो नहीं सकते थे, चल के जाना पड़ता था। पौधो डोजो कोड़ी तड़ो कोड़ी लगा मन, लोचनदास ठाकुर वर्णन कर रहे कि पौधो डोजो रोजो तय कोड़ी आगमन, पौधो ब्रज वाले चल के जाना पड़ता था। तो माधवेंद्रपुरी पास सोचने लगे कि अरे मेरा इतना उम्र हो गए, मैं कैसे जा सकता हूं चल के इतना दूर। तो कहने लगी, गोपाल गोपाल ठाकुर, मेरे द्वारा ये संभव नहीं होगा, मैं इतना दूर तक चल के जाकर और मलय जो पर्वत से लेकर आना भी मुश्किल है, क्योंकि चल के जाना पड़ेगा, बीच में बहुत सारे जंगल वगैरह है, जंगल में शेर वगैरह है, कुछ भी हो सकता है। गोपाल जी को कह दिए, लेकिन मन में कहने लगी, अरे स्वयं भगवान मेरे को बताए, भगवान का सेवा के लिए भले भी मेरा कुछ भी हो जाए, अगर मैं मर भी गया हूं फिर भी मैंने प्रयास करूंगा भगवान के लिए चंदन और कपूर लेकर आने का। ये मन में भावना लेकर माधवेंद्रपुरी पर दूसरा दिन तैयार हो गए जाने के लिए मलय जो पर्वत। तो मलय जो पर्वत जाने का समय एक दिन चल के जाना पड़ता है, रात भर तो चल नहीं पाए क्योंकि जंगल का अंदर से चलना पड़ता है सबको। बीच में एक जगह आ गए जिसका नाम है रेमुना, जो कि उड़ीसा में आते हैं, शायद इसमें से बहुत भक्त होगा जिन्होंने रेमुना क्षीरचोरा गोपीनाथ को दर्शन किए, जिसका नाम है क्षीरचोरा गोपीनाथ। गोपीनाथ विग्रह है, लेकिन उसका पहले एक शब्द युक्त हो गए क्षीरचोरा, मतलब भगवान ने खीर चोरी किए थे, किसके लिए, ना अपना परम प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी पाद के लिए। इसका कहानी बहुत ही सुंदर चैतन्य चैतन्य में चैतन्य भागवत अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग तरीका से वर्णन की। तो माधवेंद्रपुरी पाद रेमुना तक पहुंच गए, रात हो गए गोभी रात। माधवेंद्रपुरी पाद सोचने लगे कि रात को तो मेरा उम्र हो गया, अभी रात को इसी जंगल में मेरे लिए चलना मुश्किल होगा, रात को मेरे को कोई भी जगह में रेस्ट करना है, विश्राम लेना है। तो वो जब सोचने लगे, दूर से एक मतलब लाइट का एक निशानी पड़ रहे हैं उनको सामने। तो माधवेंद्रपुरी पर सोचने लगे, ये निशाना है मतलब जरूर कोई ना कोई व्यक्ति इसी जगह में रहते हैं, नहीं तो ये निशाना नहीं आ सकता है। इस निशाना का ऊपर भक्ति संत सरस्वती ठाकुर अमृत प्रभाव बोल के ग्रंथ है, जिसमें इसका वर्णन किया है कि भगवान ने सब प्लानिंग करके दिया, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पर गभीर जंगल से जा रहे थे, जंगल में कोई निशाना आने का कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन माधवेंद्रपुरी पर का मन में डर आ गया। डर व्यक्ति को दो प्रकार से आते हैं, एक अपना जीवन बचाने के लिए, और अपना धन को अगर कोई चुरा के लेके जाए उसके लिए डर आते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी पर को बस कुछ धन वगैरह कुछ भी नहीं था, निष्किंचन भक्त है, कुछ भी नहीं है साथ में, फिर भी मन में डर आ गया। भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर इस अमृत प्रवाह ग्रंथ में टिप्पणी में बताए तात्पर्य में कि इस निशाना का लक्ष्य होता है कि जब माधवेंद्रपुरी पर निशाना देख लिया, मतलब उन्होंने सोच लिया कोई ना कोई शेल्टर मेरे को मिलेगा, रात तक मैं रुक कर दूसरा दिन सवेरे फिर मैं भगवान का सेवा में अपना जीवन को मैं विधाना चाहता हूं, मरने का कोई सवाल नहीं है, अगर मृत्यु सामने उपस्थित भी हो गए उसके लिए मेरे को डरने का कोई सवाल नहीं, लेकिन रात को मेरे को एक शेल्टर होना चाहिए, एक आश्रय होना चाहिए, जिसमें रात भर रुककर दूसरा दिन सवेरे मैंने भगवान का सेवा में अपना जीवन को मैं उत्सर्ग कर सकता हूं। तो उसी निशाना को देखकर माधवेंद्रपुरी पर उसी निशाना को देखकर उसी जगह में पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखा, अरे कितना सुंदर एक मंदिर है, आज तो रेमुना जो जगह है जहां पे बहुत ही सुंदर मंदिर है गोपीनाथ जी का, क्षीरचोरा गोपीनाथ, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मकान भी बन गए, उसी जमाने में कुछ भी नहीं था। तो माधवेंद्रपुरी बाद उसी जगह में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर एक मंदिर है सामने, और मंदिर में बहुत ही सुंदर एक विग्रह है जिस विग्रह का नाम है गोपीनाथ। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। नरोत्तम दास ठाकुर जब ऐसे घूमते 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 रेमुना तक पहुंच गए थे, जब रेमुना में जाकर उन्होंने देखा कि गोपीनाथ एक विग्रह है, उसी गोपीनाथ विग्रह को देखकर उन्होंने भजन लिखे थे, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो माधवेंद्रपुरी बाद जब पहुंच गए थे उसी जगह पर, जगह कर देखा कि एक बहुत ही सुंदर एक मंदिर है, और मंदिर में बहुत ही सुंदर विग्रह है, गोपीनाथ विग्रह। विग्रह को उन्होंने देख लिए, देखने के बाद पुजारी के साथ वार्तालाप की कि किसी तरीके से इनका पूजा वगैरह होता है, किसी तरीके से इसका सेवा वगैरह होता है, आप मेरे को बताओ। तो पुजारी ने बताना चालू कर दी, और इसे वार्तालाप होते होते पुजारी कहने लगे कि दिन में 4 बार हम लोग गोपीनाथ को अमृत केली खिलाते हैं। इस अमृत केली के शुद्ध शब्द थे अमृत, अमृत केली, जिसका हम लोग बोलते हैं आज के दिन में खीर। खीर और केली ये दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रभुपाद जी इस अमृत केली और खीर ये दोनों में अंतर क्या है उन्होंने बताया। खीर स्वाभाविक रूप से हम लोग जो बनाते हैं खीर, खीर के अंदर थोड़ा चावल वगैरह डालकर दूध के साथ चावल मिक्सिंग करके वो खीर बनते हैं, लेकिन अमृत केली जो है, अमृत केली में कुछ चावल वगैरह यूज नहीं होता है। आज भी खीर चोरा गोपीनाथ में जो अमृत वगैरह बेचते हैं उसी अमृत केली में कोई भी चावल का यूज नहीं होता है, प्योर दूध के द्वारा उसी अमृत केली बनते हैं। तो कहते हैं कि पुजारी ने बताया माधवेंद्रपुरी बस हम लोग 4 बार दिन में 12 कटोरी, एक एक बार में 12 कटोरी लेकर गोपीनाथ का हम लोग खिलाते हैं अमृत के लिए। तो माधवेंद्रपुरी बात का मन में आए, अरे मैं तो इतना दिन तक गोपाल जी का सेवा कर रहा हूं, मेरे पास भी तो कितने दूध आते हैं, गांव वाले सब दूध लेकर आ जाते हैं, इतने सारे सब्जी मैं खिलाता हूं, इतने वगैरह फ्रूट वगैरह मैं खिलाता रहता हूं, लेकिन ऐसा अमृत के लिए कभी तो मैंने खिलाया नहीं। अगर ऐसा अमृत के लिए मेरे हाथ में थोड़ा आए, अगर मैंने थोड़ा चा कर लेते थे तो जाकर मैं भी गोपाल जी के लिए बनाकर गोपाल जी को खिला सकते थे। सोच लिए, तुरंत उनका मन में भावना आ रही, मैंने कितना अपराध किया हूं, ये पुजारी भगवान के लिए लेकर जा रहा है लेकिन मेरा मन में आ गया मैं पहले अगर चाक लूं तो कैसे होगा। भगवान भक्त वत्सल, भक्त का मन में अगर, भक्त हृदय से अगर चाहे तो भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। माधवेंद्रपुरी तो मांगा भी नहीं किसी के पास कुछ, जो मेरे को 1 कटोरी आप खीर दे दो, मैं थोड़ा चाक कर देखता हूं, देखने के बाद मैं अपना गोपाल को मैं खिला दूंगा। कभी भी बोले भी नहीं पुजारी को, लेकिन से मन में भावना आ गए, भावनारो दोषी तुम्हें कहो ना कि यार। चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करें, इस भावना का, इस भावना, इस कॉन्शियसनेस को भगवान ने पकड़ लिए। आपका भावना जैसे होगी इसी तरीके से आपको जीवन को आप विधा सकते हो। इसके ऊपर प्रभुपाद जी एक टिप्पणी में बताए खीर का ऊपर कि अगर आपका भावना सही है, जैसे आपका मन में अपनी भावना प्रकट कर ली कि अगर मेरे को थोड़ा खीर मिल जाए तो अपना गोपाल को मैं खिला सकता हूं, ये भावना सही है। लेकिन अगर मन में आपका ये भावना हो जाती, अरे एक ठाकुर जी के लिए लेके जा रहा है, ये तो सिर्फ प्रतिमा है, उसका पहले मैं थोड़ा टेस्ट कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन भक्त का मन में वो नहीं रहते हैं, भक्त का मन में क्या रहते हैं, प्रतिमा नोहे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंद। ये जो विग्रह हम लोग देख रहे हैं ये विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा न हे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, से स्वयं भगवान। शिव विग्रहारा धन नित्य नाना, सिंगार तनमन दिन मार्जना। तो वही माधवेंद्रपुरी पास सोचने लगे आपने को, पुजारी ने रात को भगवान को अमृत के लिए खिलाए, खिलाने के बाद सबको बांट दिए, पूरा से पूरा भगवान को शरण दे दिए, सीपाट बंद हो गए, पुजारी आके अपने घर में सो गए, और माधवेंद्रपुरी पर उसी जगह से दूर में जाकर एक वृक्ष का नीचे बैठकर माधवेंद्रपुरी पर दिन रात मतलब रात भर भगवान का गुण कीर्तन कर रहे थे। वो भी रात हो गए, पुजारी गभीर निद्रा में है, तब भगवान उनको सपने में बुलाया कि पुजारी उठो उठो पुजारी, कहो ना कि यार आमार भक्त लगी करो किछु। आर चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर इसी श्लोक को कोट किए थे, उठो उठो पुजारी कहो ना कि यार आमार भक्त लगी कहो किछु आर, मतलब आप जागो पुजारी जागो, मेरा एक परम प्रिय भक्त जो कि उस वृक्ष का नीचे उस पेड़ का नीचे मेरा ही स्मरण कर रहा है, मेरे लिए मेरा ही बारे सोचता है, आप जाओ जाके उनके लिए कुछ करो। तो पुजारी सोचने लगे कि अरे क्या हो गया इतना रात को, तो भगवान कहने लगे कि जाओ मेरा परम प्रिय भक्त है माधवेंद्र पुरी जिनके लिए मैंने कुछ खीर चुरा के रख दिया हूं। पुजारी कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो हर दिन रात को आपका स्वयं देने का पहले मैंने 12 कटरी में अमृत के लिए खिलाता हूं आपको, और उस खिलाने के बाद मैंने सबको प्रसाद रूप से सबको बांट दिया हूं, मैं भी कुछ खा लिया हूं, कुछ बचे नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि सुनो सुनो पूजा, चंद्र भागवत में इसका बहुत सुंदर पर्याय छंद में रचना की है वृंदावन दास ठाकुर, सुनो सुनो पुजारी कहो ना कि यार आमारो मनेर कथा कहिनी तुम्हार। कहने लगे पुजारी सुनो, मैंने मेरा परम प्रिय भक्त है जिनके लिए मैंने एक कटोरी खीर मैंने चुरा के रख दिया हूं। बोलते आपने चुरा के रख दिया? बोलते हाँ, कहाँ रखे हो? बोलते मेरा जो कपड़ा पहनाते हो ना इसी कपड़ा अंचल नीचे कोरी एक कुंड पारी, बोलते मेरा कपड़ा का नीचे मैंने एक कटोरी खीर मैंने रख दिया हूं, एक कुटी अमृत के लिए मैंने रखो मेरा परम प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए, आप जाओ जाकर तुरंत जाकर उसको खिलाओ, उसका मन में है एक खीर को प्राप्त करने का। तो पुजारी ने तुरंत नहा के धोकर फिर मंदिर का सीपाट में आए, मंदिर का दरवाजा खुले, खुलने के बाद जैसे भगवान उनको बताए तो उसी तरीके से कि देखा कि भगवान का वस्त्र का नीचे उसी तरीके से एक पात्र में एक कटोरी खीर है। पुजारी एकदम आश्चर्य होकर आनंदित हो गए, भाग के उसी अमृत कुली को लेकर आ गए उसी पेड़ का नीचे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए कौन है माधवेंद्रपुरी। कोथा गेला कोथा गेला माधवेंद्रपुरी, तुम्हार रहते भगवान कोइल खीर चूरी। कहा है माधवेंद्रपुरी आपने इतना भगवान व्यक्तियों कि आपके लिए स्वयं भगवान ने खीर चुरा के रख दिया आपके लिए। तो देखिए भगवान भक्त के लिए हर चीज कर सकता है अगर भगवान को हृदय से भक्त ने कुछ बताए, साक्षी देने के लिए भगवान पहुंच जाते हैं सिर्फ भक्त को रक्षा करने के लिए। परित्राणा साधुनाम बीना साय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामी जुगे जुगे। जय श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो पुजारियों लेकर गए अमृत के लिए एक कटोरी में माधवेंद्रपुरी पाद को खिलाने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी पाद को जाकर पुजारी कहने लगे कि आपने कितने भगवान हो कि आपके लिए स्वयं गोपीनाथ ने खीर चुरा के रख दिए। तो माधवेंद्रपुरी पाद बड़ा आनंदित होकर उसी खीर को उसी अमृत के लिए को ग्रहण किए, चार चार के उन्होंने खा लिए। खाने के बाद वो मिट्टी का कटोरी था उसी कटोरी का अपना कपड़ा में बांध के रख दिए। और माधवेंद्रपुरी पाद सोचने लगे अरे इतना बड़ा कहानी हो गए कि भगवान स्वयं मेरे लिए खीर चुरा के रख दिए, अगर दूसरा दिन सवेरे पूरा गांव वाले को पता हो गए तो गांव वाले तो आकर मेरे को दर्शन करेंगे, मेरे को प्रणाम करेंगे, हो सकता कि मेरा जीवन में कुछ अहंकार ना आ जाए, इसी स्थान को मेरे को जरूर त्याग करना है। उसी रात को रात माधवेंद्रपुरी पर उसी जगह को त्याग दे देंगे। और धीरे 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 उन्होंने पहुंच गए थे मलाज पर्वत तक। तब तक इस कहानी सबको पता हो गए, राजा का भी पता हो गई थी माधवेंद्र पुरी बदबल के एक परम प्रिय भक्त जिनके लिए स्वयं भगवान ने खीर चुरा के रख दिया। तो माधवेंद्र पुरीपद इस मलय पर्वत में जाकर राजा को मिल गए। राजा को जाकर बताया कि मेरे लिए मेरे को भगवान के लिए थोड़ा चंदन और कपूर वगैरह चाहिए। राजा तो उसका पहले ही सुन लिए सब माधवेंद्र पुरीपद के इस जो एक्टिविटी कार्यकारिता के बारे सब कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। राजा ने बड़े अच्छे तरीके से माधवेंद्र पुरीपद को स्वागत कर रहे थे लेकिन माधवेंद्र पुरीपद लज्जित हो गए सब देखकर। तो राजा कहने लगे कि मैंने तो आपके लिए एक मन चंदन क्या है, मैं तो आपके लिए शेर के शेर आपको मैं दे सकता हूं, जंगल के जंगल आपको मैं चंदन दे सकता हूं भगवान के लिए, लेकिन आप लेके जाओगे कैसे? जंगल है, डकैत वगैरह रह सकता है, कुछ भी शेर वगैरह है आपको काट भी सकते हैं। तो राजा ने दो आदमी दे दिए साथ में, ये जाओ आप लेकर जाओ साथ में। तो दो आदमी को लेकर माधवेंद्र पुरीपद फिर वापस लौटे मलय जो पर्वत से क्योंकि आपने गोपाल को इस चंदन लगाना है। वापस लौटने का समय फिर और रेमुना तक पहुंच गए थे। रेमुना के आने के बाद माधवेंद्र पुरीपद और चंदन को रख दिए, थक गए थे इतना दूर आए, वृद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके थे उन्होंने। आज जब चंदन को लेकर आए रेमुना तक तब माधवेंद्र पुरीपद सुने ठीक है आज रात भर मैं इधर रुक जाता हूं, दूसरा दिन सवेरे मैं फिर इधर से निकल जाऊं। तो वो भी रात हो गए, माधवेंद्र पुरीपद सो गए नाट मंदिर में। आज भी रेमुना में खिड़चला गोपीनाथ में एक बहुत ही सुंदर नाट मंदिर है, इस्कॉन का एक ट्रस्ट है भक्ति वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि श्री प्रभुपाद अपना हाथ में इस ट्रस्ट को बनाए थे जिसका नाम है BSCT भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जितने सारे पुराना मंदिर है इस पुराना मंदिर को बोलते कि रिमॉडलिंग करना मतलब पुनस्थापित करना, तो उसी चैरिटेबल ट्रस्ट का अर्थ से मतलब धन के द्वारा इस गोपीनाथ मंदिर का जो नाट मंदिर है नाट मंदिर का बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेशन वगैरह किए। जिन्होंने गोपीनाथ मंदिर दर्शन किए उनको जरूर पता होगा कि खेड़चरा गोपीनाथ का सामने एक बहुत ही सुंदर नाट मंदिर है। नाट मंदिर प्रभुपाद जी का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है भक्तिवंत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट BSCT उनका अर्थनाकुल्य वो इस नाट मंदिर को स्थापना की थी। फिर उसी समय नाट मंदिर बहुत ही छोटे थे तो माधवेंद्र पुरीपद उसी नाट मंदिर में रात भर सो गए। गोविंद जब रात हो गए तो गोपाल जी फिर सामने आ गए। तो देखिए तीन तीन बार गोपाल जी माधवेंद्र पुरीपद का दर्शन दिए थे, एक बार स्वयं लेकर आए दुग्ध, दूसरा बार चंदन के लिए, तीसरा बार ये चंदन को किस तरीके से व्यवहार करना इस निर्देश को देने के लिए। तो माधवेंद्र पुरीपद गोभी रात को सो गए तो गोपाल जी फिर सामने उपस्थित हो गए। माधव माधव जागो ना किया, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे माधव माधव बोली जागो तुम यार तुम्हारो कार्यर आजी करिल अंगीकार, अंगीकार साथे नाई कह किछु आर तुम्हारे लईते आमी सर्वपरिकार। ये आपने जो सेवा की इस सेवा को मैंने स्वीकार किया, चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर इसको वर्णन कर रहे हैं। आपने जो सेवा की है मेरे लिए इस सेवा को मैंने स्वीकार कर लिया हूं। आपने जो चंदन लेकर आए इतना कष्ट करके इस चंदन को आप पूरा गोपीनाथ का पूरा शरीर में आप लेपन कर मतलब लगा दो पूरा, तो माधवेंद्र परिवार स्वाभाविक रूप से खुश नहीं हो पाए। मतलब मैंने इतना कष्ट करके इतना जंगल पार होकर अपना जीवन को सामने रखकर मैंने सिर्फ गोपाल जी के लिए लेकर आए इस चंदन को, मैंने सिर्फ गोपाल जी को ही लगा सकते दूसरा किसी को नहीं। इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद जी एक बार इस चंदन जाता उपलक्ष्य में एक प्रवचन कर रहे थे जिसका रिकॉर्डिंग मैंने सुना था, उसमें वर्णन किया श्री प्रभुपाद कि जैसे कि ओबीराम गोपाल ठाकुर जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अंतरंग प्रिय पार्षद, जिन्होंने ब्रज लीला और गौर लीला में एक ही शरीर में भाग लिए थे। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। एक ही चरित्र है जो कि अभिराम गोपाल ठाकुर, जिन्होंने ब्रज लीला और गौर लीला में एक ही शरीर में भाग लिए थे। किस तरीके से भाग लिए? जब महाप्रभु आपने को प्रकटित कर दिए, तब उन्होंने कहने लगे कि मेरे गोपोसों का कहा है, नित्यानंद प्रभु को भेज दिए, बोलते जाओ आप वृंदावन में जाकर उनको लेकर आओ। तो आए नित्यानंद प्रभु गोवर्धन पर्वत के सामने, आकर ये अभिराम गोपाल ठाकुर को कहने लगे कि आप चलो जाके महाप्रभु को मिलो। तो अभिराम गोपाल ठाकुर कहने लगे, इस शरीर में जाकर मैंने मिल नहीं सकता हूं, अगर मेरे दूसरा कोई शरीर प्राप्त हो तो तब मैंने जाकर महाप्रभु को मिल सकता हूं। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहने लगे, अभी इसी शरीर में जाकर मिलो। पूरा गौर लीला और ब्रज लीला में एक ही चरित्र है, जो कि अभिराम गोपाल ठाकुर, जिन्होंने मातृ गर्भ बिना डायरेक्ट ब्रज लीला से गौर लीला में उपस्थित हो गए, जिनका नाम है अभिराम गोपाल ठाकुर, जो कि द्वादश गोपाल का एक गोपाल, जिसका नाम अभिराम गोपाल ठाकुर। इस अभिराम गोपाल ठाकुर का नाम स्वयं महाप्रभु रख दिए थे। जब नित्यानंद प्रभु गोवर्धन पर्वत से उनको लेकर आए महाप्रभु के सामने, महाप्रभु उनको शरीर को चेंज करके अभिराम गोपाल ठाकुर नाम रख दिए थे। इसका बहुत ही सुंदर लीला वर्णन की है। तो माधवेंद्र पुरीपाद जब गोपाल जी का मुख से ऐसा सुन लिए कि ये चंदन आप गोपीनाथ का पूरा शरीर में लगा सकते हो, तो माधवेंद्र पुरीपाद स्वाभाविक रूप से थोड़ा दुखी हो गए थे। सिर्फ दुखी नहीं, क्रोधित भी हो गए। क्रोधित आयो पड़े तारे मोह मोह बा। श्री क्षेत्र परिकांबल के ग्रंथ है जिसमें वर्णन की क्रोधी तारे कहे तोड़ो मुंह मुंह बात। मतलब माधवेंद्र पुरीपाद इतना क्रोधित हो गए थे तो कि कहने लगे कि गोपाल जी का ऊपर भी क्रोध हो गए, क्रोधित हो गए थे कि मैंने इतना कष्ट करके अपना गोपाल जी के लिए मैं लेकर आया हूं इस चंदन, अपना गोपाल जी का मेरे को अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि गोपाल जी मेरे को निर्देश दिए थे जिसके लिए इतना उम्र में मैंने गया वो लेने के लिए। तो गोपाल जी कहने लगे, माधवो माधवो बोली शांत हो तुम्हें। इस पूरा चैतन्य भागवत में इसका पैर छंद में वर्णन किया है। माधवो माधवो बोली शांत हो तुम्हें, शांत रसे कहो तुम्हें अच्छा कही आमी। तो माधव आप थोड़ा शांत हो जाओ, मेरा परम प्रिय हो माधव, आप थोड़ा शांत होकर सुनो मैं आपको क्या बोल रहा हूं। फिर भी माधवेंद्र पुरीपाद सुनने के लिए तैयार भी नहीं थे। क्रोधी तो होइया करे किछु नहीं आर, तुम्हारो आज्ञाए आमी कोहिन उपकार। अरे नहीं, मेरे को कुछ भी सुनने का नहीं है, क्योंकि मैंने अपना प्रिय गोपाल के लिए मैंने लेकर आया, क्योंकि गोपाल जी का निर्देश में मैंने ये कर रहा हूं। तो गोपाल जी फिर कहने लगे, शांत हो या सुनो, मैंने पैर चंद मैंने भूल गया हूं, मतलब इसका अर्थ ये कि गोपाल जी कहने लगे कि माधव आप जरा शांत होकर ये सुनो कि मैं क्या कर रहा हूं। गोपीनाथ रो अंगे करे लेपनो आमार, गोपीनाथ आमारे अंतर नहीं आर, जेबा सुने जेबा कहे अंत ताही आर, अंतेरो मलिने हाय करे रे दुर्बार। कहले लगे देखो माधवेंद्र, देखो माधव, ये गोपाल और गोपीनाथ ये दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अगर आपने पूरा चंदन को आप लेकर आए तो गोपीनाथ में लगाओ तो सोच लो कि मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा होगा। तो दूसरा दिन माधवेंद्र पुरीपाद पूरा पुजारी सबको बुला लिए गोपीनाथ मंदिर में, तो सबको जाके कहा कि मैं कल रात भर ये सपना देखा था कि मेरा जो परम प्रिय गोपाल जिनके लिए मैंने चंदन लेकर जा रहे थे, तो चंदन का ये गोपीनाथ विग्रह में लगाना है। तो 21 दिन का उत्सव क्यों होता है, 21 डेज चंदन यात्रा उत्सव, कि जितने चंदन माधवेंद्र पुरीपाद लेकर आए थे, चार मन चंदन संगे ताही आर, मतलब चार मन मतलब एक एक मन का अर्थ होता है 40 किलो, मतलब 40 kg इक्वेलेंट वन मन, तो मतलब 160 किलो चंदन माधवेंद्र पुरीपाद मलय पर्वत से लेकर आए थे साथ में। तो वही चंदन माधवेंद्र पुरीपाद 21 दिन तक गोपीनाथ मंदिर में रुके थे, रेमु नाम है, और इस 21 दिन पूरा 6-6 पुजारी मिलकर गोपीनाथ का विग्रह में लगाए। इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किसी चंदन जाता उत्सव अगर किसी परिवार में बना रहे, मतलब परिवार को हर व्यक्ति इस चंदन यात्रा उत्सव में भाग लेना चाहिए। किस तरीका से, मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति अगर जिन्होंने हर दिन पूजा कर रहा है घर में, कोई ज्येष्ठ व्यक्ति जो हर दिन पूजा करता है वो ही जाके चंदन लगा दे, ऐसा नहीं। क्योंकि चंदन लगाने का मतलब भगवान का चरण में आपने को समर्पित कर कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करने का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि परिवार में कोई भी व्यक्ति, इवन एक बच्चे भी हो जिनका कुछ भी नहीं आता है, वो भी अगर जाकर एक अंगुली में भगवान का थोड़ा शरीर में एक फोटा, मतलब एक छोटा भी एक बिंदु भी चंदन लगाए, वो भी कृष्ण प्रमोधन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस चंदन यात्रा उत्सव मतलब कृष्ण प्रेमोधन प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका होता है। तो परिवार में एक छोटे व्यक्ति भी, एक छोटे बच्चे जिसका कुछ भी नहीं आता, जिसका चलने का ढंग नहीं है, बात करने का कोई सिखा नहीं आज तक, ऐसे बोलते कि हामागुड़ी देकर चल रहे, जो कोई खड़ा हो नहीं सकता है, वो भी अगर इसी छोटे बच्चा एक अंगुली में एक बूंदी चंदन अगर अपना विग्रह अपना आलोक में टच किए तो वो बच्चा भी कृष्ण प्रेमोधन प्राप्त कर सकते हैं। तो चंदन जत का इतना महत्व है। प्रभुपाद जी क्लियर कीर्तनंद स्वामी को इस लिखे इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन कि घर में भी आप चंदन जाता उत्सव बनाए और परिवार को सबको इस चंदन जाता उत्सव में भाग लेने का मौका दीजिए। इस चंदन जाता उत्सव के माध्यम से आप कृष्ण प्रेम और धन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद गोपीनाथ मंदिर का सब पुजारी को बुला लिए, तो सब पुजारी तो बड़ा खुश हो गए, अरे चंदन मिल गए तो अच्छा है, तो चलो हम लोग चंदन लगाते हैं। ये चंदन यात्रा उत्सव विशेष रूप से बंगाल और उड़ीसा में एकदम फेमस, 21 दिन का उत्सव होता है नंद सरोवर में, जिसका पता होगा, जहां पे राजा इंद्रदम्भ को निर्देश दिए थे कि 21 दिन तक मेरे को लगाने का, जो नंद सरोवर उत्सव में हर दिन शाम को जल के लिए उत्सव होता है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पार्षद बिंद को लेकर इस चंदन यात्रा उत्सव को दर्शन करने के लिए हर दिन जाते थे नंद सरोवर में। और माधवेंद्र पुरीपाद जब कहने लगे कि ये पुजारी सब आओ, मैंने सपनों देखा कि मेरा परम प्रिय गोपाल के लिए मैंने जो लेकर जा रहे थे चंदन, इस चंदन को ये गोपीनाथ विग्रह में मेरे को लेपन करना, मैंने लगाना है पूरा। तो पुजारी लोग तो बड़ा खुश हो गए, यार इतना सारे चंदन मिल गए फोकट, मतलब फ्री में, मुफ्त में मिले तो क्यों नहीं लगाएंगे भैया हम लोग, चलो हम लोग सब एक साथ लगाते हैं। तो सब एक साथ मिलकर इसी चंदन को गोपीनाथ का पूरा विग्रह में लगा दिए। ये जो लीला का महात्म्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना गए अपना पार्षद बिंद को लेकर, तो रेमुना में जाकर अपना पार्षद बिंद को पूरा बता रहे इस लीला को। किसी का मन में तो प्रश्न आ सकते हैं कि अरे महाप्रभु और माधवेंद्र पुरीपाद ये दोनों में तो कभी साक्षात्कार नहीं हुए थे, कोई भी शास्त्र ग्रंथ में कोई भी जगह में इसका तो वर्णन नहीं है, लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद कहां से सुने इस चंदन यात्रा में, माधवेंद्र श्री चंद्र महाप्रभु कहां से सुन लिए कि माधवेंद्र पुरीपाद आपने हाथ में ये सब लगाए। इसको कहते कि एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा धारा से महाप्रभु ने ये शोभन की थी। कैसे श्रवण किए उन्होंने कि माधवेंद्र पुरीपाद का शिष्य ईश्वर पुरीपाद का मुखारविंद से श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला महात्म को श्रवण की थी। और माधवेंद्र पुरीपाद जब सब पुजारी को बुला लिए साथ में, तब बड़ा पुजारी सब आनंदित होकर धूमधाम में ये चंदन यात्रा उत्सव को बनाए, पूरा शरीर में चंदन लगा दिया। जगन्नाथ जी को भी 21 दिन तक पूरा चंदन लगाते चंदन जाता उत्सव में। आज जगन्नाथ जी 21 दिन अलग अलग वेश मतलब अलग अलग रूप लेते हैं, कभी राज वेश, कभी जन्म वेश, कभी नटवर वेश, एक ही दिन का अलग अलग उत्सव होता है। और इस नंद सरोवर में लास्ट दिन मतलब चंदन यात्रा का अंतिम दिवस में एकादशी तिथि शायद, तो उसी दिन में सब एक साथ हो जाते हैं। और ये सब देखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पार्षद बिंदु सबको लेकर गए साथ में, और बड़ा धूमधाम से नरेंद्र सरोवर के सामने जाकर महाप्रभु कीर्तन करना चालू किए थे। महाप्रभु जब कीर्तन करना चालू किया, जितने सारे पंडा लोग है, तो पंडा लोग देख रहे कि अरे एक एक महान वैष्णव जो कि इतना बड़ा धूमधाम से कीर्तन करना चालू किया, महाप्रभु का कीर्तन को सुनकर लगता है कि स्वयं जगन्नाथ जी नाच रहे हैं इसमें। इस चंदन यात्रा उत्सव का अंतिम दिन जिसको बोलते हैं कि भैर उत्सव, इस भैर उत्सव में महाप्रभु स्वयं ये नंद सरोवर में उपस्थित होकर अपना पार्षद बिंदु को लेकर गए साथ। चैतन्य मंगल ग्रंथ में इसका वर्णन किया है कि महाप्रभु के अंतरंग प्रिय पार्षद जिन्हें बड़ा अच्छे तरीके से इनका कीर्तन वगैरह चालू किए थे, तो इसी कीर्तन को सुनकर महाप्रभु दो हाथ ऊंचा करके महा एकदम संकीर्तन करना चालू की, और सब पुजारी लोग एकदम आश्चर्यित हो गए कि सब लोग महाप्रभु को देखकर कीर्तन करना चालू कर दिए। और लगता है कि जगन्नाथ जी महाप्रभु का कीर्तन में स्वयं भाग ले रहा है, और पुजारी देख रहा है कि जगन्नाथ जी उसी नाव में नहीं है, और जगन्नाथ जी महाप्रभु जिस तरीके से अपना पार्षद को लेकर कीर्तन करें नरेंद्र सरोवर के एकदम सामने जाकर, तो लगता है कि जगन्नाथ जी स्वयं महाप्रभु के साथ ही कीर्तन करना चालू कर दिए इस चंदन यात्रा उत्सव में। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी विशेष रूप से निर्दिष्ट की चंदन यात्रा उत्सव को बड़ा धूमधाम से बनाना है। कृष्ण प्रेम धन पाइबे तो मां, और जीवन का जब अंतिम मुहूर्त पहुंच गए माधवेंद्र परिपाल, इसका वर्णन किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में कि जीवन का वार्धक्य अवस्था जब प्राप्त हो गए माधवेंद्र परिपाल, एक श्लोक उन्होंने उच्चारित किए थे, ओ ही दीन दयार्ध नाथ सदा बल्ल कशे, ओ ही दीन दयार्ध नाथ हे मथुरा नाथ कदा बल्ल कशे, हृदय तद लोक कात रंग द्वैता ब्रह्मति किम कजम करम महामी। हे दीन दयार्ध नाथ, मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूं, मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूं, ओ ही दीन दयार्ध नाथ, हे दीन दयार्ध नाथ आप मेरे को बताओ मैं कैसे आपको मैं प्राप्त कर सकता। जीवन का अंतिम मुहूर्त में जब माधवेंद्र पुरीपाद पहुंच गए, तब इसी श्लोक अपना मुखारविंद से उन्होंने उच्चारित करना चालू किए, ओ ही दीन दयार्ध नाथ सदा बल्ल कशे। आप इस लीला को स्मरण करने का समय कलिजुगेर पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ओ ही दीन दयार्ध नाथ सदा बल्ल कशे, ये पूरा श्लोक को उन्होंने उच्चारित नहीं कर पाया अपना मुखारविंद के द्वारा। सब उन्होंने कहने लगे, ओ ही दीन दयार्द, ओ ही दीन दयार्द, ओ ही दीन दयार्द, मूर्छित हो गए थे। भूपति तो कोई लो तारे कहो ना किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ये माधवेंद्र परिपद का अंतिम समय में जो श्लोक उन्होंने उच्चारित किए थे, वही दीन दयार्द नाथ इस चंदन यात्रा उत्सव को जब विस्तृत रूप से अपना पार्षद बिंदु के सामने उन्हें स्थापना की थी, जब अंतिम समय पहुंच गए थे, वही दीन दयार्द नाथ, तब श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए, इसी पूरा श्लोक पर उच्चारित नहीं कर पाए अपना मुखारविंद के द्वारा। तेई चंदन यात्रा उत्सव में हर भक्त को, जैसे कि श्री गोपाल जी वर्णन कर रहे कि इस चंदन यात्रा उस समय अगर किसी का मन में भावना है कि मैं कैसे चंदन लगा सकता हूं, मेरे को तो कुछ आता नहीं चंदन लगाना, लेकिन अगर आपको नहीं भी आए चंदन लगाना, आपको डर रहा है मन में कि मैं भगवान को जाकर मैं कैसे स्पर्श कर सकता हूं, जगन्नाथ जी पूरा साल में एक दिन हर व्यक्ति को दर्शन देने के लिए बाहर निकल जाते हैं अपना मंदिर को छोड़कर, वो है रथ यात्रा उत्सव। कोई भी उच्च नीच हो, कोई भी जात का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, जगन्नाथ जी इतना कृपालु है सबको दर्शन देने के लिए बाहर में रोड में खड़ा हो जाता है जगन्नाथ जी कि मैं इतना कृपालु हूं कि मैंने सबको कृपा करने के लिए आपका घर घर तक मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन मूर्ख हम लोग है कि वो कृपा का हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जीवन में हमारा दुख ही दुख मिलता रहता है। और भगवान भी इतने कृपालु है, इस रथ यात्रा उत्सव छोड़कर ये जो चंदन यात्रा उत्सव 21 दिन तक सबको कृपा कर रहे हैं कि अगर आपका मन में विचार है कि मेरे को कृष्ण प्रेम और धन को प्राप्त करना है तो आकर मंदिर में आइए, आकर थोड़ा चंदन आप घिसिए, उसी चंदन का भगवान का सेवा में आप अर्पित कीजिए, तो देखिए आप कृष्ण प्रेम और धन आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जितना भी पाखंडी व्यक्ति हो, जिंदगी में कभी भी भगवान का दर्शन भी नहीं किए हैं, भगवान का प्रसाद भी कभी ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने भी आकर किसी को देखकर भी अगर थोड़ा भगवान के लिए भी चंदन घिसा है तो भगवान इतने कृपालु होता है कि एक दिन के लिए भी अगर पखंडी व्यक्ति भगवान के लिए चंदन घिसे तो भगवान उसको प्रेम धन मिला देते हैं। तो भगवान ने इतने कृपालु होता है तो भगवान सबके लिए कृपा करने के लिए तैयार है। इसके लिए कहते कि नमो महावदन नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिश नमो। भगवान सबको कृपा करने के लिए इसी कली युग में भगवान ने आपने को प्रकटित की थी, नहीं तो कली युग मतलब कलह, हर व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़ा रहते रहता है। प्रायण अल्पायुष कलहस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग वही उपाधि का, सब मंद भाग को हम लोग लेकर आए, हर समय झगड़ा विवाद लड़ाई चलते रहते हैं। फिर भी इसी कली युग में एक अच्छा चीज है जो है कि भगवान आपने को सुधारने के लिए, बद्ध जीव को सुधारने के लिए एक ही तरीका बताया है, वो है भगवान का दिव्य नाम जुगो धर्म हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस 16 नाम 32 अक्षर को अगर कोई पकड़ के रखे तो अपना जीवन को सुधार कर इसी जीवन में भगवान धाम को पहुंच सकते हैं। इस चंदन यात्रा उत्सव का महत्व में वर्णन किया है। इस चंदन यात्रा उत्सव में कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा समय के लिए भी चंदन को घिसे तो देखिए हर मंदिर में जाकर, विशेष रूप से इसकंद का कोई भी मंदिर हो, जैसे हमारे राधा गिरिधारी मंदिर में पहला दिन बड़ा सुंदर तरीका से राधा गिरिधारी को चंदन सजे थे बड़ा विग्रह को, लेकिन भक्त कम होने का कारण हर दिन करना संभव नहीं होता है, जैसे मायापुर में रेगुलर होता है। राधा रसबिहारी में पहला दिन राधा रसबिहारी गौर निताई सीताराम लक्ष्मण इवन हनुमान जी को तक चंदन लगाए थे कि भक्त संख्या ज्यादा है तो, लेकिन अच्छा विग्रह जो छोटो विग्रह आप लोग देख रहे हैं हर दिन जरा ध्यान से देखिए, तो हर दिन चंदन लगाते हैं 21 दिन तक। और भगवान एक एक दिन एक एक तरीके से वेश ग्रहण कर लेते हैं इस 21 दिन में। इसका भी बहुत ही सुंदर लीला है जहां पे भगवान ने राजा इंद्रदमन को निर्देश दिए थे कि मेरे को पूरा शरीर में मेरे को चंदन लगाओ जगन्नाथ जी को, तब भगवान जगन्नाथ जी को चंदन लगाने के लिए राजा इंद्रदमन ने बहुत सारे आदमी को उन्होंने इकट्ठा कर दिए थे, लेकिन राजा इंद्रदमन का मन में यह भावना था कि मैं सब लोग चंदन बांटे और बस मैं जाकर थोड़ा लगा दूंगा। जगन्नाथ जी दूसरा दिन राजा इंद्रदमन कहने लगे आपका सेवा के द्वारा मैं संतुष्ट नहीं हूं, कहने लगे क्यों, आपने तो बताया था कि पूरा चंदन लगाने का, बोलते हाँ चंदन लगाने के लिए मैंने कहा था आपको, लेकिन आपने खुद चंदन को बांटे क्या? तो राजा इंद्रदमन ने लज्जित हो गए, कहने नहीं नहीं मैंने तो अपना जितने मतलब आदमी है सबको मैंने बोल दिया था, सब लोग ने एक कट्टा करके दिया चंदन को, तो उसी चंदन में जाकर आपको लगा दिया, बोलते नहीं आपने खुद किए क्या? बोलते नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं। तो इस चंदन यात्रा उत्सव इस्कॉन का हर मंदिर में बड़े अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं। आप मायापुर में जाकर देखिए, श्री श्री राधा माधव भगवान नरसिंहदेव पंचतत्व सबको लगाते हैं बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है इसका। कि चंदन जत्ता है कि महा महोत्सव कहते हैं श्री प्रभुपाद। इस महा महोत्सव के द्वारा आपने कृष्ण प्रेम और धन को प्राप्त कर सकते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु इस ईश्वरपुरी बात का मुखारविंद से, क्योंकि परंपरा धरा से आए, तो किसी का मन में तो प्रश्न यहां आ सकता है कि महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी पर दोनों में कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, कोई दोनों का साक्षात्कार का वर्णन कोई भी किताब में, कोई भी ग्रंथ में, कोई भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। लेकिन महाप्रभु किस तरीका से अपना पार्षदविंद को जाकर, जो मायावादी भाष्यकार रहते हैं, जो अपर संप्रदाय आज भी बहुत ही सक्रिय है, बहुत इफेक्टिव रहता है अपर संप्रदाय। अपर संप्रदाय किसको कहते हैं? इसलिए प्रभुपाद ने 13 प्रकार अपसमुदाय का इंडिकेट किया। ये अपसमुदाय आज का नहीं है, ये महाप्रभु का समय से है। अपसंप्रदाय अपसंप्रदाय इतने शक्तिशाली है कि अपसंप्रदाय महाप्रभु को प्रचार करने के लिए रुकावट लगा दिए थे। जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को लेकर जाते थे गांव गांव में प्रचार करने के लिए, तो अपसंप्रदाय इतना शक्तिशाली हो गए थे कि अपर समुदाय खुद आकर लड़ाई नहीं किए। शास्त्र में वर्णन किए कि जगाई मधाई को भेज दिए थे अपर संप्रदाय ने। कहते कि जब जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु को चक्र को देखकर स्तंभित हो गए, तब जगाई का मुखारविंद से निकले कि ताबोले कि प्रेम देवे ना यदि मारी कोलसी रेखा ना नेशार झोके यदि जगाई मधाई ना थकत तबे निमाई के कि चिंतन। तो अपर संप्रदाय इतने शक्तिशाली है, महाप्रभु का प्रचार आंदोलन को रुकावट लगा दी थी अपर संप्रदाय। देखिए भगवान को कौन रुकावट लगा सकते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर सबसे ज्यादा लड़ाई की थी अपर संप्रदाय का वाले। तो भगवान का जो हर तरीके से जो उत्सव वगैरह रहते हैं, ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी ये अव्यय चिन्मय लीला, इस चिन्मय लीला को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका भगवान का ऊपर परम श्रद्धा है। और इस श्रद्धा को कैसे जागृत कर सकता है? सिन्नताम शकत कृष्णा पूर्ण शोभन कीर्तना। भगवान का लीला का अगर पूर्ण श्रद्धा से अगर कोई व्यक्ति शोभन करे तो वही समझ सकते हैं। एक पाखंडी व्यक्ति को जाकर बताइए जे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक ही अंगुली में उठा है, तो पखंडी व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कोई भक्त को जाकर बताए तो भक्त समझ सकते कि भगवान के द्वारा हर चीज संभव हो सकता है। नहीं तो माधवेंद्रपुरी पर इतना उम्र हो गए थे, इतना उम्र हो जाने के बाद भी भगवान ने उनको निर्देश दिए कि माधव आप जाओ, मेरे लिए आप ही चंदन लेकर आ सकते हैं। भगवान का तो इतने सारे पार्षद थे, भगवान तो किसी को भी बता सकते थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी बात का समसामयिक बहुत थे, जैसे ईश्वरपुरी बात, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद गिरी, बहुत सारे भक्त थे, सभी भगवान का निकटस्थ जन। निकटस्थ करे तारे माया उपजन, और निकटे कोरिया तारे करे आपन जन। जो भगवान का निकट रहते हैं वो भगवान उसको अच्छे तरीके से बुला लेते हैं। तो भगवान तो किसी को भी बुला सकते थे कि जाओ आप मेरे लिए थोड़ा चंदन लेकर आओ, लेकिन भगवान किसी को नहीं बोले, भगवान से माधवेंद्रपुरी पास की बोले। क्यों ना? माधवेंद्रपुरी पास भगवान का निकट जन। तो माधवेंद्रपुरी पास थोड़ा संकोच बोल रहे थे कि मेरा इतना उम्र हो गए, मैं कैसे जा सकता चंदन लेने के लिए। फिर भी भगवान का निर्देश, भगवान ने उनको बताया कि आप जाओ, जाकर मेरे लिए आप चंदन लेकर आओ। माधवेंद्रपुरी सोचना है कि ये मेरा जीवन में एक चरम परीक्षा है, भगवान मेरे को परीक्षा लेना चाहते हैं। भले भी मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भगवान के लिए मैं चंदन लेकर आऊंगा। एंड दैट इज कॉल्ड कृष्ण भावना। इसको कहते हैं कि कृष्ण भावना, भगवान के लिए कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। प्रभुपाद जी इसके लिए कहते कि चंदन यात्रा उत्सव को अगर कोई भी ज्यादा ध्यान कर अगर सुन ले इसी चंदन यात्रा उत्सव को, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইয়া শুনে যেই জান শ্রীকৃষ্ণ চরণে সেই পায় প্রেমধান। জিনোনি আগা শ্রদ্ধা কে সাথ ইস লীলা কো আগা শ্রবণ ভি করে বালে ভি কুছ চন্দন জাত মে কুছ ভাগ ভি নেই লিও না। এক বিন্দু মানে এক এক পয়েন্ট ভি সেবা নেই কিয়ে থে ইস চন্দন যাত্রা উৎসব মে, লেকিন ইস চন্দন যাত্রা উৎসব মে আগর ইস চন্দন যাত্রা কা লীলা কো বড়া ধ্যান সে উন্হনে অধ্যয়ন কিয়ে বড়া ধ্যান সে উন্হনে শ্রবণ কিয়ে তো ওই পাখণ্ডী ব্যক্তি ভি কৃষ্ণ প্রেম ধন কো প্রাপ্ত কর সকতে। ভগবান কা লীলা মে ইতনা শক্তি হ্যায় ইতনা মাহাত্ম্য হ্যায়। ইসকে লিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ জি একদম লাস্ট ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থে কি ইস দে 21 দিন কা যে উৎসব হ্যায় এই 21 দিন মাধবেন্দ্র পরিবাদ কা যে লীলা কাহিনী জো কি শ্রী চৈতন্য চৈতন্যমৃত গ্রন্থ কা মধ্য লীলা মে ইসকা বর্ণন কিয়ে হ্যায়, লগভগ 230 কি 240 শ্লোক মে ইসকা বর্ণন কি হে। হর দিন ভক্ত নেই ওই পাখণ্ডী ব্যক্তি ভি আগর অধ্যয়ন ভি করে থোড়া 240 শ্লোক মে আগর শুরু বাদ সে আগর পড়ে তো ওই ব্যক্তি ইস চন্দন যাত্রা মে কৃষ্ণ প্রেম ধন প্রাপ্ত কর কৃষ্ণ কা ধাম যাহা পে স্বয়ং ভগবান আজ ভি লীলা বিলাস কর রহে উসি লীলা ধাম মে যাকর আপনা কো ভগবান কা লীলা কে সাথ ভাগ লে সকতে হে। ইস চন্দন যাত্রা কা ইত্তা মাহাত্ম্য হে। इस 21 दिन तक सबको ये सोचना चाहिए माधवेंद्र परिपाद किस तरीका से भगवान का सेवा की थी, कभी कुछ किसी को बस नहीं मांगे उन्होंने। इसके लिए भगवान तीन तीन बार उनको दर्शन दिए, दुग्धदान छोले कृष्ण देखा दिला तारे। पहली बार माधवेंद्र परिपाद का जीवन में के स्वभाव थी तो कभी किसी को बस कुछ मांगते नहीं थे उन्होंने, लेकिन कभी भूखा नहीं रहे। क्यों ना भगवान का चरण में उन्होंने आपने को समर्पित कर दिए थे। रासो रसा रम भी तटे कहे ना कि तो माधवेंद्र परिपाद अपना जीवन का भगवान का चरण में ही समर्पित कर दिए थे। तो जीवन का अंतिम मुहूर्त जब उपस्थित हो गए माधवेंद्र परिपाद के जीवन में तब उन्हें कहने लगे ओ ही दीन दयार्द नाथ सदावल्ल कश्यप, हे दीन दयार्द नाथ आप कब मेरे को दर्शन दोगे, फिर मैं आपके लिए मैं इंतजार करूं। कृष्ण प्रेम और रस भार सार कृष्ण भावना का रस भार सार जो है माधवेंद्र परिपार। आज महाप्रभु जो है इस कृष्ण प्रेम तरंगिनी वृक्ष का मूल स्कंध, আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কা জিতনা গৌড়ীয় ভক্ত হ্যায় ও হ্যায় মূল স্কন্ধ কা ব্রাঞ্চেস দা শাখা পে শাখা। সবকা সামনে এক মৌকা হ্যায় কৃষ্ণ প্রেম ভাব কো আর কৃষ্ণ প্রেম ধন কো প্রাপ্ত করনে কা এ চন্দন যাত্রা উৎসব মে ভাগ লেনে কা। শ্রীল মাধবেন্দ্র পরিপাদ কি, চন্দন যাত্রা মহা মহোৎসব কি, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি হরে কৃষ্ণ। আড়াই বজ গে নির্দেশ থা আড়াই বজে খতম করলে কা তো মানে প্রয়াস কিয়া। হরে কৃষ্ণ। আবি লোকাধ্যক্ষ বউ বহু দিন বাদ আয়ে গাঁও সে তো লোকাধ্যক্ষ সব মুখারো বিন্দু সে আমরা কুছ শ্রবণ ভি করেঙ্গে কিন্তু সময় বহুত হ্যায় অভি কুছ নির্দেশ ভি হ্যায় কুছ অ্যানাউন্সমেন্ট ভি হ্যায় শায়দ। হরে কৃষ্ণ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। তো আজকে ইস রবিবার প্রীতি ভোজ উৎসব মে উপস্থিত হুয়ে সবই ভক্ত কাজ স্বাগত হ্যায়, লাইফ মেম্বর অতিথি আর সবই ভক্তগণ কাজ ইস উৎসব মে স্বাগত হ্যায়। বিশেষ কর আপনি আজ মহোৎসব মে বিভাগ লিয়া, প্রীতি ভোজ উৎসব তো হ্যা হি লেকিন সাথ সাথ রথ ইয়ে যে চন্দন যাত্রা মহোৎসব হ্যায় ইসমে ভি আপকো আজ ভাগ লেনে কা অবসর মিলা, ইয়ে হামারা বহুত বড়া সৌভাগ্য হ্যায়। বিশেষ কর হাম স্বাগত করনা চাহতে হ্যায় কি আজ পহলি বার ইস উৎসব মে কন উপস্থিত হুয়ে হ্যায়, কৃপা করকে খড়ে হো যায়। ইস রবিবার কে প্রীতি ভোজ কার্যক্রম মে পহলি বার কন আয়া হ্যায়, ये भाग्यशाली दो जीवात्मा। तो आपका इस मंदिर में स्वागत है। प्रभु जी हम आपको बता दें कि प्रति रविवार इस प्रकार का उत्सव होता है जिसमें भगवान का दर्शन, भगवान का आरती, भक्तों का संग और भगवान की कथा श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। तो आप प्रति रविवार आ सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, और इसका लाभ उठाकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका भी स्वागत है। सभी भक्तगण आज इन नए आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नए जो आए हैं उनके लिए सूचना है कि यहाँ पर कथा के बाद प्रसाद का वितरण होता है, तो 1 बजे से पहले पहले आप प्रसाद का कूपन प्राप्त कर लें, तब आपको फ्री प्रसाद का सेवा मिलेगा। साथ में आज आपको चंदन यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से कथा सुनाई, बहुत ही जैसे उन्होंने सार में बताया कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। प्रेमा पुमर्थो महान, मनुष्य जीवन का जो परम अर्थ है वो है भगवत कृपा, भगवत प्रेम को प्राप्त करना। तो कितनी सरलता से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सुंदर ढंग से। भगवान के लिए एक दिन भी आप अगर थोड़ा सा चंदन घिसकर लगाएंगे, थोड़ा चंदन का सेवा करेंगे, तो आप इस कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। तो जो जीवन का परम लक्ष्य है, तो हम बहुत ही आभारी हैं हिज ग्रेस चंद गोपी प्रभु के कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें इस चंदन यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। तो सभी भक्तगण इनका आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भाग्यशाली वैष्णव पंथ को स्वीकार करते हैं उनके लिए हमेशा उत्सव होता है।